ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवतम चौथा स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 12। तम एवं शील संपन्नम् ब्रह्मण्यम् दीन वत्सलम् गोप्तारम् धर्मसेतूनां मेनिरे इतरं प्रजाः। तमेवं शीलसंपन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः। तमेवं शीलसंपन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: ध्रुव महाराज दैवी गुणों से संपन्न थे। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य थे। तात्पर्य: यहां पर ध्रुव महाराज के जिन व्यक्तिगत गुणों का वर्णन हुआ है वे साधु राजा के आदर्श गुण हैं। केवल राजा ही नहीं वरन आज की प्रजातांत्रिक सरकार के नेताओं में भी ये गुण होने चाहिए, तभी राज्य के नागरिक सुखी रह सकते हैं। यहां पर यह स्पष्ट बताया गया है कि सारे नागरिक ध्रुव महाराज को अपना पिता मानते थे। जिस प्रकार से बालक अपने पिता पर आश्रित रहकर पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार राज्य के नागरिकों को राज्य अथवा राजा द्वारा सुरक्षा प्राप्त करके सभी प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए। किंतु आजकल राज्य में जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं यानी धन तथा जन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इस प्रसंग में ब्रह्मण्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज वेदों के अध्ययन में रत तथा श्री भगवान को जानने वाले ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे। वे ब्राह्मण निरंतर कृष्ण भक्ति का प्रसार करते थे। राज्य को चाहिए कि जो भी संस्थाएं और विश्व में ईश्वर चेतना का प्रसार करती हैं उनका सम्मान करें। किंतु दुर्भाग्यवश आज ऐसी एक भी सरकार या राज्य नहीं जो ऐसे आंदोलनों की सहायता करता हो। जहां तक सद्गुणों का प्रश्न है, राज प्रशासन में ऐसा एक भी व्यक्ति पाना कठिन है जो सद्गुणों से युक्त हो। प्रशासक गुण कुर्सी पर बैठकर हर प्रार्थना को अस्वीकार करते रहते हैं, मानो उन्हें इसी के लिए वेतन मिलता है। एक अन्य शब्द दीन वत्सलम भी महत्व का है। राज्य के प्रमुख को दीनों के प्रति दयालु होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस युग में राज्य के एजेंट तथा अध्यक्ष राज्य से उच्च वेतन प्राप्त करते हैं और अपने को पवित्र मानते हैं, किंतु वे उन कसाई घरों को चलने देते हैं जहां निर्दोष पशुओं का वध होता है। यदि हम ध्रुव महाराज तथा आज के राजनीतिज्ञों के गुणों की तुलना करें तो देखेंगे कि इन दोनों में कोई तुलना नहीं है। ध्रुव महाराज सत्ययुग में हुए थे, जैसे कि अगले श्लोक में से स्पष्ट होगा। वे सत्ययुग के आदर्श राजा थे। इस कलयुग में सरकारी प्रशासन समस्त सद्गुणों से शून्य है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आज मनुष्यों के समक्ष धर्म, जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए कृष्ण भक्ति, कृष्ण चेतना ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया। अनुवाद को दोहरा कृत में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। हराव अभक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोरथे नासति धावतो बही। बताया जाता है जो व्यक्ति यस्यास्ति भक्ति भगवति अकिंचना, भगवान श्री हरि के प्रति जो अकिंचन, जो निष्किंचन शुद्ध भक्त भगवान के शरण, जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनके अंदर सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरः, उनके अंदर सारे ऐसे अच्छे गुण आ जाते हैं जो देवताओं में भी आते हैं। तो केवल भक्ति करने मात्र से ही भक्त सारे सद्गुणों से संपन्न हो जाता है, सद्गुणों से युक्त हो जाता है। तो ये भक्ति की खूबी है। भक्ति करने से और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। भक्ति अपने आप में संपूर्ण है, सारे सद्गुण प्रदान करने के लिए युक्त है, समर्थ है। भक्ति के अलावा और कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य जो पद्धतियां हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, जैसे ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, कर्म मार्ग है, तो ये सारे अपने आप में संपूर्ण नहीं है। जब तक कि वो भक्ति के मार्ग, भक्ति मार्ग का सहारा नहीं लेंगे, तब तक इन पथों में चलने वाला यात्री पूरी तरह से सबसे ऊंचे सफलता की प्राप्ति नहीं कर सकता है। लेकिन भक्ति मार्ग अपने आप में स्वतंत्र है, सर्वोच्च है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान श्री हरि की भक्ति करता है अनन्य भाव से, तो सारे ऐसे अच्छे आध्यात्मिक गुण उसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए बताया जाता है, यस्यस्ति भक्तिर भगवति अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। सुरः मतलब देवता, सुर और असुर। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं होते वो असुर कहलाते हैं। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एवच। विष्णु भक्तः स्मृतो दैव आसुरस्तत् विपर्ययः। पुराणों में बताया जाता है कि दो प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में, एक है सुर और दूसरे हैं असुर। जो लोग विष्णु के भक्त हैं उनको सुर कहते हैं, और जो लोग विष्णु के भक्त नहीं हैं उनको असुर कहते हैं। विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तत् विपर्ययः। विपर्ययः मतलब जो उसके विपरीत है, जो विष्णु भक्त नहीं है उनको असुर कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है। तो इस तरह से भगवान श्री विष्णु या श्री हरि के भक्त बनने मात्र से ही सारे सद्गुण हमारे अंदर आ सकते हैं और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार सभी को, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को भगवान श्री हरि का भक्त बनना चाहिए। यही जीवन की सफलता मानी जाती थी। अतः पुंबिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्। जन्म की, जीवन की सफलता किसमें बताई जाती है? चाहे हम किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम के क्यों न हो, लेकिन हमारे जीवन की सफलता है श्री हरि को प्रसन्न करना, संसिद्धिर हरितोषणम्। अगर कोई व्यक्ति अच्छा ब्राह्मण बन रहा है, अच्छा क्षत्रिय बन रहा है, कोई अच्छा गृहस्थ बन रहा है, अच्छा ब्रह्मचारी बन रहा है, लेकिन श्री हरि को प्रसन्न नहीं कर रहा है, तो फिर उसका जीवन सफल नहीं हो जाता। हालांकि उसे ऊंचा पद प्राप्त होगा अगले जीवन में, क्योंकि वो अपने निहित कर्म कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो ये नहीं समझता कि उसके निहित कर्म करने का उद्देश्य है कि श्री हरि को प्रसन्न करें, इसलिए उसे बारंबार यहां जन्म लेना पड़ेगा। भले ही वो स्वर्ग लोक में, महरलोक, जनलोक, ब्रह्म लोक में भी क्यों ना जन्म ले, लेकिन जन्म तो लेना पड़ेगा। और इस तरह से धीरे धीरे वो प्रगति करेगा, लेकिन भौतिक बंधन में ही रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति सोच समझ लेता है कि वास्तव में जीवन की सफलता इसी में है कि हम भगवान को प्रसन्न करें, तो वो व्यक्ति वास्तव में संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम में लौटकर चले जा सकता है। वर्णाश्रमाचारवता, ये आचार वैष्णव जो वर्णाश्रम, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेन परह पुमान विष्णु आराध्यते पंतः तदीयानाम समर्चनम। पुराणों में बताया जाता है कि वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम के जो अलग अलग नियम बताए गए हैं, इनके आचरण बताए गए हैं, इनमें से सार मुख्य नियम जो होता है वो है विष्णु आराध्यते पंथः, कि विष्णु या श्री हरि की आराधना करनी चाहिए, और यही सबसे ऊंची आराधना है। लेकिन इससे ऊंची आराधना जो भी विष्णु भगवान से संबंधित हैं, जैसे उनका नाम है, उनके भक्त हैं, उनका विग्रह है, इनकी आराधना करना, इस तरह से वैष्णव बनना ही जीवन की सर्वोच्च स्थिति है, हमारे जीवन की सफलता है। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार ये आदेश दिया जाता था सभी को कि चाहे हम किसी भी समाज के वर्ग के क्यों ना हो, हमें वैष्णव बनना चाहिए। हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि राजा हो या साधारण आदमी हो, सभी लोग वैष्णव हुआ करते थे। ध्रुव महाराज सारे ब्रह्मांड के राजा हैं, लेकिन फिर भी वो वैष्णव है, और व्यक्तिगत उनके अंदर ऐसे गुण भी हैं जो वैष्णव के होने चाहिए। ध्रुव महाराज ये नहीं सोच रहे थे कि मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, इसलिए मुझे वैष्णव बनने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नम्र बनने की आवश्यकता नहीं है, मुझे वैष्णव गुणों का अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ध्रुव महाराज समझते थे कि जितना हम ऊंचा पद समाज में स्वीकार करें, जितनी जिम्मेदारी हम हमारे कंधों पर लें, उतनी ही ज्यादा आवश्यकता है कि हम वैष्णव गुणों का अनुशीलन करें। क्योंकि जितना ज्यादा धन हमारे पास होता है, जितनी ज्यादा योग्यता होती है, जितनी ज्यादा हमारे पास में जिम्मेदारी होती है संसार में, हमारे ऊपर ये बोझ आता है कि हम अच्छे वैष्णव बनकर हम इन जिम्मेदारियों का सही तरह से, इन जिम्मेदारियों को सही तरह से निभाएं। अगर हम वैष्णव न बने तो हमें यह समझ में नहीं आएगा कि इन जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे। इसलिए ध्रुव महाराज वैष्णव होने के नाते अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे मुझे व्यवहार करना चाहिए, कैसे प्रजा का देखभाल करना चाहिए, कैसे प्रजा का संरक्षण करना चाहिए। इसलिए यहां बताया जाता है तम एवं शील संपन्नम। शील मतलब सारे देवी गुण, संपन्नम मतलब युक्त थे वो। तो ध्रुव महाराज वैष्णव होने के नाते शील संपन्नम थे, देवी गुण संपन्न थे वो। और उनका व्यवहार कैसे था? जब ब्राह्मण दिव्य गुणों से युक्त होता है तो उसका एक प्रकार का व्यवहार होता है। क्या व्यवहार होता है? श्रमो दमस्तपः शौचम क्षांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण उल्लेख करते हैं कि जब वास्तविक कोई ब्राह्मण हो जाता है तो उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। कैसे गुण होने चाहिए? कि वो शांत होना चाहिए, उसने इंद्रियों को दमन कर लिया होना चाहिए, वो तपस्वी होना चाहिए और वो मन से शांत होना चाहिए, वो धार्मिक होना चाहिए, धर्म के नियम का पालन करते हुए रहना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, धर्मों के नियम का अनुभव उसके हृदय में होना चाहिए। इस तरह से जो ब्राह्मण वैष्णव होता है उसके अंदर जो भी गुण होने चाहिए उनका वर्णन है। दयालु होना चाहिए, क्षमा की भावना उसके हृदय में होनी चाहिए। इस तरह से क्षत्रिय के अंदर जैसे ध्रुव महाराज है, वैष्णव बनने के बाद कैसे गुण होने चाहिए इनका वर्णन हम यहां श्लोक में पढ़ रहे हैं। तो क्या गुण है चलिए देखते हैं। ब्रह्मण्यम, ब्रह्मण्यम मतलब ब्राह्मणों को सम्मान देने वाले। ये हम देखते हैं कि वैदिक प्रथा है, संस्कृति है। संसार में आदमी जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सारे ब्रह्मांड का राजा भी क्यों ना हो, लेकिन जब ब्राह्मण उनके पास सामने आता था कोई भी, तो वो खड़े हो जाते थे, ब्राह्मण को सम्मान देते थे। बलि महाराज असुर कुल में पैदा हुए थे, सारे ब्रह्मांड के राजा थे। ऐसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था ब्रह्मांड में जो कि बलि महाराज का सामना कर सके। यहां तक कि इंद्र और सारे देवता एक ऐसे जगह में गए थे जहां कोई उनको ढूंढ नहीं पाए। वेश बदल कर ब्रह्मांड के अलग अलग कोने में छुप रहे थे, इतने घबरा रहे थे बलि महाराज की शक्ति से। लेकिन जब वामन देव एक बटु ब्राह्मण का वेश धारण करके आए तो बलि महाराज ने क्या किया? उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा राजा हूं और ये छोटा बटु ब्राह्मण कौन है, ये तो कोई भी नहीं, छोटा सा बालक है ये, तो इसका हम तिरस्कार करेंगे। नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा। जैसे ही बलि महाराज ने देखा कि ब्राह्मण मेरे यज्ञशाला में आए हुए हैं, तुरंत उठे, अपने जगह से उठे, वो खड़े हो गए सम्मान करने के लिए। हालांकि उस ब्राह्मण को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, ये भी नहीं जानते थे कि ये प्रामाणिक ब्राह्मण है नहीं है, कौन है, ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ है, तो तुरंत वो सम्मान देते थे। खड़े हो गए और वामन देव के चेहरे पे भी इतना तेज था, क्योंकि आखिर वो तो स्वयं भगवान है और भगवान जब अपने ब्रह्म तेज को प्रकट करना चाहते हैं तो कोई कठिनाई नहीं होती है भगवान को। तो इस तरह से वामन देव के सामने बलि महाराज ने अपना सर झुकाया, उनके पैर धोए, उनकी आराधना की, मीठे शब्दों से उनका स्वागत किया, उनको बैठने के लिए अच्छा आसन दिया, उनकी सेवा की। तो देखिए, सारे ब्रह्मांड के राजा एक छोटे से बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्राह्मण को, बटु ब्राह्मण को इतना सम्मान देते थे। और ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने सम्मान वामन देव को इसलिए दिया कि वो भगवान है। जिस समय बलि महाराज ने उनका सम्मान किया उस समय वो नहीं जानते थे कि ये भगवान है, वो केवल ब्राह्मण के रूप में उनको देख रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार से वैदिक जमाने में सारे राजा जो भी हुआ करते थे ब्राह्मणों को इतना आदर सत्कार देते थे कि जब ब्राह्मण उनके दरबार में आता था तो ब्राह्मण को उनके सिंहासन पर बिठाते थे, उनके पैर धोते थे, खुद स्वयं अपने हाथों से पैर धोते थे, उनकी आरती करते थे। स्वयं कृष्ण भगवान ने यह उदाहरण दिखाया। जब सुदामा गए, सुदामा के कपड़े फटे हुए थे और सुदामा को देखकर कोई ये कह नहीं सकता था कि ये कौन बड़े विद्वान होंगे, बड़े आदमी होंगे, नहीं। दिखने में भी बड़े ऐसे सफर करके आए थे तो कुछ स्वच्छ भी नहीं लग रहे थे, कपड़े भी फटे हुए थे, कपड़े गंदे थे और हाथ में केवल एक लकड़ी थी और लकड़ी में जो है लकड़ी के कोने में एक कपड़ा था जिसमें थोड़ा बहुत कुछ उन्होंने भर पोहा भर के लाया था। बस सुदामा के पास यही था और कुछ नहीं था। यहां तक कि सारे जो द्वारपाल थे सोच रहे थे कि कौन है ये कैसे राजा के महल में जा सकता है। लेकिन वैदिक प्रथा थी कि कोई भी ब्राह्मण किसी भी समय राजा के दरबार में जा सकता था, राजा के सामने जाकर राजा को वो कह सकता था कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो। ये पोजीशन, ये स्थिति थी ब्राह्मणों की कि वो किसी भी राजा को जाकर डांट सकते थे। ऐसे ब्राह्मणों की स्थिति थी और राजा सुन भी लेते थे क्योंकि जानते थे कि ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो है वो समाज के सर के समान है, मस्तिष्क के समान है, जो सारे शरीर को मार्गदर्शन करता है। उसी प्रकार से ब्राह्मण जो है वो सारे समाज के मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए उनका सम्मान अगर ठीक तरह से नहीं किया जाएगा तो फिर समाज का पतन होना निश्चित है। इसलिए कृष्ण भगवान ने भी सुदामा का ऐसे सम्मान किया। जब दूर से देखा कि सुदामा आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी से वहां जाकर सुदामा का आलिंगन किया और सुदामा कहने लगे कि मैं तो इस योग्य नहीं हूं, मैं तो एक पापी, एक छोटा सा ब्राह्मण हूं और कहां आप सारे द्वारका के राजा, यदुकुल के पीठ पर बैठने वाले इतने बड़े राजा, स्वयं भगवान, कहां आप और कहां मैं, और आप मेरा आलिंगन इस तरह से कर रहे हैं, मैं तो इसके लिए योग्य नहीं हूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक नहीं मानी सुदामा की, आलिंगन किया, सुदामा को अपने बिस्तर पर बिठाया, अपने निजी कमरे में लेकर गए और वहां बिठाया और उनके पैर धोए और फिर जो भी वो चरणामृत था फिर अपने ऊपर उन्होंने छिड़क दिया और अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर, अपने रानियों को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया और उनके ऊपर ये भी छिड़क दिया, चरणामृत छिड़क दिया और सुदामा के गुणगान करने लगे। पहले सुदामा की आरती की, स्वयं उन्होंने दीप अर्पण किया, चामर अर्पण किया, पूरी तरह से आरती की। और फिर जब सुदामा और भगवान कृष्ण बैठ रहे थे चर्चा करने के लिए तो उन्होंने रुक्मिणी देवी से कहा कि अभी आप चामर चलाओ सुदामा जी के ऊपर। तो सुदामा जी को का देखभाल करने के लिए स्वयं रुक्मिणी देवी चामर चला रही थी। देखिए ये सम्मान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण की ओर दे रहे थे। ऐसे कितने ही कथाएं हैं हमारे ग्रंथों में। दशरथ महाराज भी किस तरह से स्वागत किया करते थे, ये रामायण में वर्णन आता है। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि ये वैदिक संस्कृति है और ध्रुव महाराज भी ऐसे ही ब्राह्मणों को सम्मान देते थे। इसलिए यहां ब्राह्मण्यम शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे एक गुण बताया गया है, दीन वत्सलम। दीन वत्सलम मतलब जो वास्तव में गरीब है उनके प्रति बहुत दयालु होते थे, तो वैसे राजा को होना चाहिए। बताया जाता है कि जिस राज्य में प्रजा दुखी है तो प्रजा का दुख राजा के सर पे आएगा, राजा को यह भुगतना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति राज्य में भूखा है, कोई तड़प रहा है, कोई बेरोजगार है, किसी को खाने के लिए नहीं है, सोने के लिए ठीक जगह नहीं है, तो इसका जिम्मेदार राजा होता है। राजा का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा का संरक्षण करे, प्रजा का पालन पोषण करे, इसी को राजा कहते हैं। आजकल के समाज के नेता केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, अपने व्यवस्था को, अपने अपने परिस्थिति को सुधार करने के लिए चेष्टा करते हैं, लेकिन प्रजा किसी भी परिस्थिति में हो इसके बारे में वो सोचते नहीं है। तो इस तरह से दीन वत्सल ये भगवान का एक गुण होता है। उसी तरह से भगवान के भक्त होते हैं वो भी दीन वत्सल होते हैं, करुणा की भावना उनके हृदय में होती है, और देखते हैं कि जो भी व्यक्ति जहां भी वो अगर दुख के मारे उसके पीड़ित है वो, तो उसके कैसे उद्धार करना चाहिए, उसको कैसे उसके जीवन में कैसे सुधार लाना चाहिए। यहां तक कि राजा स्वयं अपने भी अपना भोजन दे देता था। जैसे महाराज रांती देव की कथा है, जब महाराज रांती देव एक बार बड़ा उपवास कर रहे थे और 40 दिन उपवास किया उन्होंने, उसके बाद में जब वो उपवास तोड़ने वाले थे तो उनके सामने जल और भोजन रखा हुआ था। तो उपवास तोड़ने ही वाले थे कि उनके सामने कोई ब्राह्मण आए, और ब्राह्मण ने कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे थोड़ा भोजन चाहिए। तो तुरंत महाराज रांती देव ने आधा भोजन जो है वो उस ब्राह्मण को दे दिया, और जैसे ही वो बाकी भोजन को आरंभ कर रहे थे, खाने के लिए शुरू कर रहे थे, उस समय और एक शूद्र वहां पर आए। तो शूद्र जब आए उधर तो उन्होंने कहा मैं भी भूखा हूं। तो महाराज रांती देव ने कहा तो ठीक है ये ले लो। जो भी उनके पास और भोजन था उनके लिए एक हिस्सा दे दिया और बाकी थोड़ा कुछ रह गया। और उस समय जो बाकी भोजन था वो खाने जा रहे थे तो और कोई चंडाल अपने कुत्तों को लेकर साथ में आए, कहा मैं भूखा प्यासा हूं, मेरे कुत्ते भी भूखे हैं। तो महाराज रांती देव ने कहा ठीक है जो भी मेरे पास बाकी है ले लो। भोजन भी दे दिया, जल भी दे दिया, और इस समय महाराज रांती देव के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा और प्रायः मृत्यु की अवस्था तक पहुंच गए थे। और उस समय ये सारे जो पहले ब्राह्मण आए थे, चंडाल आए थे, शूद्र आए थे, उन्होंने अपना असली रूप बता दिया। वो वास्तव में देवता थे, वेश बदल कर आए थे महाराज रांती देव की परीक्षा करने के लिए। और उन्होंने आशीर्वाद दिया महाराज रांती देव को कि वास्तव में हम आपकी परीक्षा करना चाहते थे, अभी हम समझ गए हैं कि आप कितने महान हैं, और आपके गुणों का प्रचार करने के लिए, ताकि आपके गुण सारे विश्व भर में, इतिहास में, काल में भी फैल जाए, इसलिए हमने आपकी परीक्षा की। तो आपके ऐसे गुण ये सभी को समझने चाहिए कि वास्तव में राजा को क्या होना चाहिए। इसी तरह से एक महाराज शिबी थे, महाराज शिबी इनका वर्णन भी श्रीमद् भागवत में आता है कि एक बार एक डव को क्या कहते हैं जो सफेद कबूतर की तरह होता है, बदक नहीं, बदक डक होता है, सफेद रंग का कबूतर जैसा होता है, जो शशांक जो शांति के लिए वो शांति का निशानी है वो, हंस तो स्वान है, ससार, खैर जो भी है, सफेद रंग का जो कबूतर की तरह होता है डोव, शांति का वो प्रतीक है, शांति के लिए वो डव का होता। खैर तो एक बार एक बड़े से ईगल, ईगल को क्या बोलते हैं, ईगल ईगल गरुड़, तो एक गरुड़ एक बार चील, एक गरुड़ या चील एक बार इस ये सफेद कबूतर का पीछा कर रही थी। तो कबूतर महाराज शिबी के पास आई शरण लेने के लिए कि ये मेरे पीछा कर रहे हैं, मेरी जान का खतरा है, तो आप मुझे बचाइए। तो महाराज शिबी ने कहा अवश्य बचाएंगे, आप भी मेरे प्रजा हो, प्रजा का संरक्षण करना मेरा कर्तव्य होता है, जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तो ठीक उसी समय वहां पर वो चील भी आ गया और चील कहने लगा कि ये जो कबूतर है ये मेरा भोजन है, तो मुझे चाहिए। तो आपके संरक्षण में है, उसे छोड़िए, मुझे दीजिए। राजा ने कहा नहीं, ये मेरे शरण में आया है, प्रजा है, और इसका संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो चील ने कहा, बड़ा बुद्धिमान था, कि ये जितना आपकी प्रजा है, मैं भी तो प्रजा हूं ना, हम दोनों प्रजा हैं। हाँ सही बात है, तो मेरा संरक्षण करना भी आपका कर्तव्य है। हाँ वो भी सही है, तो मैं अगर भूखा मर जाऊं तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। हाँ जिम्मेदार होऊंगा, तो ये मेरा भोजन है, आप इसको बचा रहे हैं, लेकिन इसको बचाकर आप मुझे मार रहे हैं, क्योंकि मेरा भोजन कुछ नहीं है, अभी मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। तो महाराज शिबी ने सोचा, हाँ ये भी सही है। तो महाराज शिबी ने कहा, ठीक है, इसके लिए उपाय है कि स्वयं मैं मेरे शरीर को काटकर जितना मांस इस कबूतर का है उतना मैं काटूंगा, वजन पे वजन करके देखेंगे कि इसका कितना है। और जब वजन किया, उन्होंने देखा कि वास्तव में ये कबूतर भारी 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 होते जा रहा, तो फिर वास्तव में महाराज शिबी को खुद बैठना पड़ा उस तराजू में। और जब महाराज शिबी वहां बैठे तो देखा कि कबूतर और दोनों का बिल्कुल ठीक ठाक हुआ, अर्थात अपना पूरा शरीर को देना पड़ा। तो जैसे उन्होंने फिर चील से कहा कि ठीक है, मेरा सारा शरीर आपके लिए अभी अर्पण है। उस समय वो चील और कबूतर दोनों ने अपना असली रूप प्रकट कराया, और वो वास्तव में वो भी देवता थे, वो भी महाराज शिबी की परीक्षा करने आए थे। और उन्होंने कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं, वास्तव में आपके महानता का के गुणगान हम सब जगह फैलाना चाहते थे। तो ये है क्षत्रिय, ये है दीनवत्सल, जो भूखे हैं प्यासे हैं उनके लिए खुद अपने शरीर भी देने के लिए तैयार होते थे राजा। ये दीनवत्सल जो शब्द है, ये कृष्ण दीनवत्सल है, इसलिए उनके भक्त भी दीनवत्सल होते हैं। कृष्ण के गुण जो हैं वो अपने भक्तों में भी आ जाते हैं। इसलिए देखिए, राजा पहले के जमाने के क्या हुआ करते थे, आजकल के क्या कोई नेता है जब देखते हैं कि कोई लोग भूखे हैं तो सोचेंगे कि आज का भोजन मैं नहीं लूंगा, ऐसे कोई है नेता आप जानते हैं? वे खुद लोगों के भोजन को छीन कर खुद ले लेते हैं, लोगों की आमदनी को खत्म करके अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं, ये आजकल के नेता हैं। लेकिन पहले के जमाने में नेता देखो कैसे हुआ करते थे, अपने शरीर को भी अगर खत्म करना पड़े, अगर प्रजा को संतुष्ट रखने के लिए, प्रजा के संरक्षण के लिए, तो वैसे किया करते थे। कोई भी प्रजा, किसी भी एक व्यक्ति, केवल मनुष्य नहीं, कोई पशु के हृदय में भी कोई तकलीफ हो तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए राजा हमेशा आतुर रहते थे। तो देखिए, ये है राजा, इसलिए यहां दीन वत्सल बताया गया है। और फिर गोप्तारम, गोप्तारम मतलब संरक्षक, जो उनकी रक्षा करेगा। उसी तरह से हमने अभी आपको बताया कैसे महाराज शिबी ने उस चील की और कबूतर की दोनों की रक्षा की, और इतना ही नहीं, वो वृक्षों का भी की भी रक्षा करते थे। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्यों की या पशुओं की, वृक्ष की भी रक्षा करते थे। इस तरह से वो जानते थे कि सारे योनियां जो है वो भगवान के संतान है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तिया तासां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता, कि मैं सारे योनियों का बीज प्रदाता हूं हे अर्जुन, सारे योनियां मुझसे ही आती हैं। इसलिए इस दृष्टि से देखा जाए तो हम सब भाई भाई हैं, सारे योनियां। इसलिए मनुष्य योनि में हमें ज्यादा शक्ति है, ज्यादा बुद्धि है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे योनियों को खत्म करें। बड़े भाई का कर्तव्य ये नहीं होता कि छोटे भाई को मारकर खा जाए, बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि छोटे भाई की रक्षा करे, वो सुखी है कि नहीं देखे। उसी तरह से मनुष्य योनि को चाहिए, मनुष्य समाज को चाहिए कि मनुष्य समाज के भीतर भी जो शक्तिशाली है वो कमजोर वर्ग को की रक्षा करें। जैसे बताया जाता है कि जो वृद्ध होते हैं, जो बीमार होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, और जो बालक होते हैं, और जो ब्राह्मण होते हैं, इनका संरक्षण करना क्षत्रियों का कर्तव्य होता है। तो मनुष्य समाज में भी शक्तिशाली लोगों को कमजोर लोगों का संरक्षण करना चाहिए, और मनुष्य समाज को कुल मिलकर गाय की रक्षा करनी चाहिए, सारे पशुओं की रक्षा करनी चाहिए और सबको मिलकर यहां तक कि वृक्ष पौधों की भी रक्षा करनी चाहिए। तो देखिए वैदिक सभ्यता कितनी महान है, कितना उदार हृदय होता है वैदिक सभ्यता में। और आगे एक धर्म सेतु नाम कि ध्रुव महाराज सारे धर्म के नियमों का पालन करते थे। आजकल के धर्म निरपेक्षता वाल का शरण के शरण लेने वाले जैसे नेता नहीं थे वो। वो जानते थे कि धर्म क्या है और धर्म के नियम का पालन स्वयं अपने जीवन में करते थे और ये भी देखते थे कि प्रजा धर्म के नियम का पालन कर रही है कि नहीं। परीक्षित महाराज स्वयं घोड़े पे घूमते थे, सारे अपने राज्य भर में भ्रमण करते थे देखने के लिए कि सारी प्रजा धर्म का पालन कर रही है कि नहीं, और अगर कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो उनको दंड देते थे। जैसे एक बार जब वो अपने घोड़े पे भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति को देखा जो अपने तलवार से एक बैल की पैर बैल के पैर को काटने जा रहा था। तो उस समय परीक्षित महाराज बड़े क्रोधित हुए, उस व्यक्ति को मारने ही जा रहे थे जो कि मूर्तिमान कली है, इस कलयुग का मूर्तिमान स्वरूप वो थे। तो उस समय मूर्तिमान कली ने परीक्षित महाराज का शरण लिया। तो क्षत्रिय के लिए भी नियम होता है कि अगर कोई व्यक्ति उनका शरण लेता है तो उनकी हत्या नहीं कर सकता वो। तो जब मूर्तिमान कली ने उनका शरण लिया तो परीक्षित महाराज ने उनको मारा नहीं, लेकिन कहा कि ठीक है तुम मेरे शरण में आए हो, मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें यहां इस जगह में रहना ठीक नहीं है क्योंकि तुम यहां गाय की बैल की हत्या करते हो, तुम जैसा पापी यहां मेरे राज्य में रह नहीं सकता, धर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाला ऐसा व्यक्ति मेरे समाज में रह नहीं सकता, तो इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसे जगह भेजूंगा जहां सब पाप होता है, जहां पापियां सब है, तुम वहां जाकर रहो, यहां मेरे राज्य में नहीं रह सकते। इस तरह से क्षत्रिय को होना चाहिए, खुद भी धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए और प्रजा ठीक तरह से कर रही है कि नहीं वो भी देखना चाहिए, और अगर प्रजा ठीक से धर्म का पालन कर रही है और अन्य कोई उनको परेशान करते हैं तो जो परेशान कर रहे हैं उनको दंड देते थे। लेकिन हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में भक्तों को परेशान करने वाले कितने लोग होते हैं, लेकिन नेता बहुत कम होते हैं ऐसे राज में जो भक्तों के परेशानी को कम करने के लिए जो आतुर हो। लेकिन ध्रुव महाराज और परीक्षित महाराज जैसे राजा वैदिक जमाने में हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आतुर रहते थे, हमेशा देखते थे कि धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं। ये है क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब है क्षत्रायते, जो प्रजा को कष्ट से बचाए, और वो जानते थे कि अगर प्रजा धर्म का पालन नहीं कर रही है तो कष्ट तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए आजकल के समाज में इतने सारे कष्ट आ रहे हैं क्योंकि कोई भी वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन यापन नहीं कर रहा है, सभी लोग अधर्म का पालन कर रहे हैं। तो राजा या नेताओं का कर्तव्य होता है कि धर्म की स्थापना पुनः यहां करें, अगर नहीं करेंगे तो अंत में भगवान को आना पड़ेगा और वो आएंगे भी कल की अवतार में, फिर ऐसे सारे दुष्ट राजाओं को नाश कर देंगे और फिर धर्म की संस्थापना पुनः करेंगे और फिर सत्ययुग फिर से आरंभ होगा। ध्रुव महाराज जैसे यहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं सत्ययुग में रहते थे, तो कलयुग के नेता जब अधर्म का पालन करेंगे तो कल्कि को स्वयं भगवान को आना पड़ेगा और पुनः सत्ययुग का युग को उनको स्थापित करना होगा और फिर वास्तव में लोग सुखी हो जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।